तीसरी सीढ़ी पे चलते हैं इबादत की। पहली क्या थी सब बोले? वर्शिप, परस्तिश, नमाज, रोज़ा, जो इबादत का एक आम मफहूम है। दूसरी क्या थी? इताअत, सबमिशन। अब तीसरी सीढ़ी पे चढ़ना है जिसको गुलामी कहते हैं। स्लेवरी कह लीजिए, सॉल्वेशन कह लीजिए, गुलामी कह लीजिए। क्या पता चला? रब की इबादत भी करो, रब की बात भी मानो, और फिर उसके बावजूद सब कुछ करके खुद को अल्लाह का गुलाम समझो। कोई अकड़ नहीं, कोई तकब्बुर नहीं, कोई बड़ाई का दावा नहीं, कोई तुम इल्म वाले नहीं बन गए, कोई तुमने अभी दुनिया फतह नहीं कर ली, अभी तुम कोई बहुत नेक नहीं हो गए। अब अल्लाह के आगे ऐसे आओ जैसे कोई गुलाम अपने आका के सामने आता है। और मैंने और आपने तो गुलामी देखी भी नहीं है। हम तो अपनी मेड से ही तसव्वुर ला सकते हैं कि वो जो बेचारी 100-200 लेती है हमसे, वो किस तरह हमारे आगे झुकी होती है। सुबह की आई, शाम को जाए, चाहे सारे घरों से एक घर से दूसरे घर में भूखी प्यासी फिरती रहे, वो जुबान नहीं खोल सकती क्योंकि वो हमारी मासी हैं बेचारी। इस आईने में आज हम सब खुद को देखेंगे तो इंशाल्लाह अगर ये आ गया, देखिए जिसको अल्लाह की मार्फत आ गई ना, जिसका ताल्लुक बिल्ला ठीक हो गया ना, उसके अंदर से वो सारी खराबियां निकल जाएंगी जो बाद में इंसान के अंदर खराबी पैदा करती हैं। अगले स्टेप पे चलते हैं, दूसरा हुक्म, वबिल वालिदैनि एहसाना, वालदैन के साथ एहसान करो। और याद रखिए ये एहसान वो एहसान नहीं है जो उर्दू का एहसान है। उर्दू में एहसान किसको कहते हैं? कि ज़रा जो करे उससे ज़्यादा कर दो। हाँ, अरबी जबान में यहाँ एहसान वो नहीं है, हुसन से माँ बाप का तो हक भी नहीं दे सकते, एहसान करने का तो मामला क्या। यहाँ एहसान से मुराद क्या है? एक्सीलेंसी के दर्जे पे काम करो, दी बेस्ट ट्रीटमेंट करो अपने पेरेंट्स के साथ। वालदैन के हक की तो क्या बात करें, पूरी पूरी इस पर कैसेट्स और सीडीज और रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। माँ की दुआ जन्नत की हवा एक ऑडियो है, उसमें माँ बाप पे थोड़ी बात हुई है और बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स हैं। लेकिन याद रखिए अल्लाह के हक पाने के बाद, उसको पहचानने के बाद, सबसे बड़ा हक हम पे हमारे माँ बाप का, और उनकी भी खिदमत करनी है, रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन गलत बात उनकी भी नहीं माननी। अगर माँ बाप किसी नाफरमानी का हुक्म दे, गुनाह का हुक्म दे, तो उसको नहीं करना। और हकीकत है कि माँ बाप के लिए तो हम अगर अपनी सारी ज़िंदगी भी लगा दें तो हमने उनका हक अदा नहीं किया। एक शख्स ने सहाबी से आके पूछा कि मैंने अपनी माँ को अपने कंधों पे उठाकर तवाफ़ करवा दिए, हज या उमरा करा दिया, क्या मैंने अब माँ का हक अदा कर दिया? तो उन्होंने कहा तूने तो उसे एक दर्द का हक अदा नहीं किया जो तेरी पैदाइश के मौके पे उसने बर्दाश्त किया था। आपको पता है कि शायद मैंने सही याद नहीं है, अपनी मेमोरी से बता रही हूँ, 7 हार्ट अटैक इकट्ठे हों या शायद इससे भी ज़्यादा, उससे ज़्यादा डिलीवरी की पेन होती है। माँ को जो बच्चे को जन्म देते वक्त दर्द है, अब ये तो हमें उस वक्त समझ आती है जब हम माएँ बनती हैं, लेकिन जब तक हम बच्चियाँ और हम औलाद रहते हैं हम इसको नहीं समझते। सुबह के दर्स में एक पोएम सुना के आई हूँ, अगर किसी को याद होगी तो बाद में उनसे सुन लीजिएगा कि कैसे माँ बाप हमसे फरियादें करते हैं, किस तरह उनको हमसे गिले कि हम उनको बड़े होने पे डांटते हैं, तेज़ चलो, ये खाना क्यों गिरा दिया, आपको समझ क्यों नहीं आती, बात क्यों बार बार दोहराते। वही माँ जिसने बोलना सिखाया, जिसने लिखना सिखाया उंगली पकड़ के, हम उन्हीं पर बाद में चिढ़ते हैं। वही जिसने कपड़े बदला के कई कई दफ़ा दिन में हमें साफ सुथरा रखा, हम एक से दो बार उनके कपड़ों पे खाना गिरा देखें तो हम परेशान होते हैं। वो माँ जो सारी रात गीले पे सो गई हमारे लिए, और जिसने हमें पैम्पर में डाला, जिसने पॉटी ट्रेन किया, आज उसकी गंदगी बर्दाश्त करनी पड़े तो कहते हैं इसको कोई ले ही जाए तो अच्छा। एक माँ 6 बच्चे पाल लेती है, 6 बच्चे मिलके एक माँ को नहीं संभाल सकते। तो किसी इंसान की बड़ाई ये है कि वो अपने माँ बाप की नज़रों में कितना छोटा है, उनके नज़रों में अपने आप को बच्चा समझता है। आप जितने मर्जी बड़े हो जाएं, आप अपने माँ बाप से बड़े नहीं हो सकते। तीसरी चीज़, वज़िल क़ुरबा, रिश्तेदारों का ख्याल रखो। ये सबसे मुश्किल खाता है। हम सोचते हैं रिश्तेदारों का ख्याल क्या है कि वो दावत करें तो हम उनके घर जाएं, शादी हो तो हम उनके घर जाएं, फिर 8-8 दिन के फंक्शन तय करें, फिर कभी हम भी उनकी दावत कर दें, फिर ईद पे जोड़ा उनको दें, वो ले आए। देखिए ये तो दुनियादारी है, तो हम किसी के साथ भी करते हैं, आप अपनी दोस्तों के साथ भी ये कुछ करती हैं। रिश्तेदार का हक क्या? नबी सल्लम से पूछा गया, जब आपने कहा कि सिला रहमी करो, क़यामत के दिन इसके बारे में सवाल होगा, तो किसी ने पूछा कि क्या मतलब है, जब वो हमारे साथ अच्छा सलूक करें तो हम उनके साथ अच्छा करें? फरमाया ये तो कोई सिला रहमी नहीं, ये तो हर एक से होती है। सिला रहमी क्या है? कि जो तुझसे कटे तू उससे जुड़, जो तुझे महरूम करे तू उसको अता कर। हमें से हर एक को किसी न किसी मौके पे अपने किसी रिश्तेदार से दुख ज़रूर पहुंचा होगा, इसी तरह हमने भी दिया होगा क्योंकि हम भी किसी के रिश्तेदार हैं। यहाँ बैठे बैठे अगर आप अपनी बीमारियाँ, टेंशन, स्ट्रेस और नेगेटिविटी दूर करना चाहते हैं ना, तो दिल की गहराई से कह दें मैंने सब को माफ़ किया। यकीन करें आपके कंधे हल्के हो जाएंगे, आपका 5 पाउंड वज़न कम होता हुआ महसूस होगा। ये ग्रजीज और गुस्से जो दिलों में लेके बैठते हैं ना, ये हमें फिर इबादत में भी खुशबू नहीं लेने देते। नमाज में भी याद आ रहे होते हैं वही कि उसने मुझे सताया और उसने किया। रिश्ते नातों पर लड़ते हैं और कभी जायदादों पर लड़ते हैं। अल्लाह कहते वह ज़िल क़ुरबा, और आपको पता है कि अल्लाह ने इसको रहम से जोड़ा है। यूट्रस, मदर वूम, ज़िल क़ुरबा, क़ुरबत वाले, यानी अल्लाह का अपना नाम और रहमान और रहीम है, उससे अल्लाह ताला जोड़ रहा है इस नाम को। तो रिश्तेदारों के लिए दिल नरम रखें, सुकून के साथ उनकी इस्लाह की फ़िक्र करें। सबसे बेहतरीन रिश्तेदारी का हक क्या है कि जिस दीन को अगर अल्लाह ने आप तक पहुंचा दिया और जो चीज़ आपको एक नेमत के तौर पे मिल गई है, आप अपने रिश्तेदारों तक वो पहुंचाइए। अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, उस पे तो हम बोलते भी नहीं, कहते नहीं कौन बुरा बने, क्योंकि रिश्तेदारों को हमारे सारे अगले पिछले हालात भी पता होते हैं, तो फिर हम उनके आगे तो ज़ुबान भी नहीं खोलते। हम कहते हैं छोड़ो, वो उनको तो कहेंगे लो जी ये तो इतनी खुद ऐसे गुनाहगार थी, आज हमें तबलीग करते आ गई। हम भी थे गुनाहगार क्योंकि जाहिल थे, क्योंकि कुरान ज़िंदगी में नहीं था। हज़रत मूसा की सुन्नत है कि जब उनको ताना दिया किसी ने कि तू वही है जो कत्ल करके भाग गया था, कहा हाँ किया था, नादान था, नहीं पता था, अनजाने में हुआ। तो कभी अपने आप को पैदाइशी मुत्तकी और मुस्लिम और सैयद ना समझा करें। दूसरों को भी कहें हाँ मैं इंसान हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, और बहन मिल के करते हैं। तो अच्छी चीज़ों को शेयर करना चाहिए अपने रिश्तेदारों से। फिर अगली चीज़ वल यतामा, यतीम, दबे पिसे खुटे हुए लोग, कि जिनके अंदर हकीकत में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कि जिनको कोई पूछता भी नहीं है। देखिए अपने बराबर वालों को देना बहुत आसान होता है क्योंकि जवाब में मिलने की भी उम्मीद है। अपने जैसों के साथ ताल्लुक़ रखना, उनको खिलाना पिलाना, तोहफे देना लेना बहुत आसान है क्योंकि बराबरी का मामला। लेकिन जहाँ से कोई वापसी पर कुछ मिलना तो दूर की बात है, कोई अप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगी, किसी को नाम भी आपका याद नहीं रहेगा, वो नेकी बड़ी मुश्किल है। वल मसाकीन, और मिस्कीन, दबे हुए पिसे हुए लोग किसी सोसाइटी के, अल्लाह कहते हैं उनका ख्याल करो। बताइए इतना खूबसूरत मज़हब या दीन कोई है दुनिया में कि जो हर एक का हक अदा करना में सिखाए। और उसके बाद फिर आप देखिए, पहले इबादत की बात हो गई, माँ बाप के हकूक की बात हो गई, रिश्तेदारों के साथ अच्छे मामले की बात हो गई, यतीमों और मिस्कीनों की बात हुई, तो अब छठे दर्जे पे कहा वकूलु लिन्नासि हुस्ना, और लोगों से अच्छी बात करो, एहसान की बात करो, खूबसूरत बात करो। तुम्हारी ज़ुबानें छुरियाँ ना हों, तुम्हारी ज़ुबान कैंची की तरह ना चले, तुम्हारी ज़ुबान किसी के आंखों में आंसू लाने का ज़रिया ना बने। अच्छा अखलाक और अच्छी बात का दर्जा कितना है बीच में रखा। मैं इसको बाद में टच करूँगी, पहले आयत का आखिरी हिस्सा पूरा करूँ। आपने देखा है अभी 5 बातें पढ़ी, छठी बात कुलुल नासि हुस्ना, इसको बीच में करके अगली पे जाके देखिए व अकीमुस्सलात, अब नमाज पढ़ो। यानी नमाज से पहले अच्छे अखलाक की बात की है, इससे आपको आला अखलाक होना और अच्छी बात करना इसकी अहमियत समझ आएगी। अब इसका ये नहीं मतलब कि नमाज पढ़ो ही ना, बस लोगों से अखलाक अच्छा रखो, ये वही करेगा जिसको पूरे दीन का पता ही नहीं है। असल में यहाँ अल्लाह सुबहाना ताला ने बनी इसराइल को जो 10 अहकाम दिए थे उसका तस्करा कर दिया, क्योंकि नमाज भी बंदे की तभी नमाज बनती है जब उसका बंदों के साथ मामला अच्छा होता है। और नमाज पढ़ो और लोगों के साथ तुम्हारी ज़ुबान इतनी तेज़ हो, ये अच्छी बात नहीं होती। फिर अगली चीज़ बात उस ज़कात, 8वीं चीज़ या 9वीं चीज़ कह लीजिए, अब ज़कात दो। माल की भी ज़कात है, इज्जत की भी ज़कात है, सोच की भी ज़कात है। आपको पता है ज़कात क्या? 2.5%, हर 100 में से 2.5 दे दो। कितना दिया अल्लाह ने? 100 दिया ना अल्लाह ने, अल्लाह ने दिया ना, कह दीजिए हाँ। हमारा ईमान है ना कि अगर मेरे पास 100 यूरो हैं तो अल्लाह ने दिए ना, 1,000 है तो
अल्लाह ने।
एक लाख है, एक करोड़ है और 10 करोड़ है, ये सब अल्लाह ने दिया। क्या वो ये नहीं कह सकता था कि मैंने तुम्हें 100 दिया, 250 तुम रख लो, 97.5 मुझे वापस करो? कर सकता था कि नहीं? 97 पॉइंट मेरे, 2.5 तुम्हारी ज़रूरियात, कर सकता था ना? नहीं किया। ये कह सकता था कि चलो 10 रख लो, 90 मुझे वापस करो? नहीं कहा। 20 रख लो, 80 मुझे दे दो, चलो और कुछ नहीं बराबरी कर लो, 50 तुम रख लो, 50 मुझे दे दो, कह सकता था ना? चलो छोड़ो मैं तुम्हें और देता हूँ, तुम 60 रख लो, 40 मुझे दे दो, चलो और दिल पे हाथ पड़ता है, 70 रख लो, 30 दे दो। कहाँ बात ख़त्म हुई 100 पे 250, बात करते हुए भी शर्म आती है। आपके पास 100 रुपये और आप उसको तुड़वा के किसी को 250 रुपये देना तो वो आपका मुंह देखेगा, माशाल्लाह बड़े साहूकार निकले। किसी इंसान को भी आप 100 में से 250 दें तो कितनी शर्म आएगी? तो अल्लाह क्या मांगता है? 100 में से 250, तो फिर भी कितने हैं जो ये भी नहीं देते? हदीस में आता है वो माल जिसकी ज़कात अदा ना की, क़यामत के दिन वो गंजे सांप की सूरत में उसके गले में लिपटेगा और उसका मुंह खोलकर उसको डसेगा और कहेगा अना कंजुक अना कंजुक। ये बुखारी की रिवायत है, मैं हूँ तेरा ख़जाना, मैं हूँ तेरा ख़जाना। कंज कहते ही उस माल को है कि जिस पे ज़कात ना दी गई हो। आज आप देखिए, थोड़ा पैसा होता है ना तो ज़कात देनी आसान लगती है, वजह क्या है? ही थोड़ी। और पैसा ज़्यादा हो तो ज़कात दें तो चीखें निकल जाती हैं, और जब उस ज़कात को यूरोज़ को पाकिस्तानी में ज़रब दे के देखे तो और चीख निकलती है, लाखों में ज़कात है। हम वो नहीं देखते जो 97 पॉइंट हमारे पास है, हम वो देखते हैं कि जो 250, कितना है 250, कितने लोग हैं जो वो भी पूरी नहीं देते। क्या मुकाम है हमारा अल्लाह के यहाँ। और बाज़ लोगों ने सिर्फ उस 250 को ही हद बना के कहा सबको इसी में डरखाना है, बेटियों की शादियाँ भी लोगों की इसमें करनी है, गरीबों की मदद भी इसमें करनी है, मासियों की तनख्वाह से एक्स्ट्रा पैसे भी इसी में से ही देने हैं, मस्जिदें मदरसे सब इसी में बनाने हैं। और सवाल भी पूछते हैं तो हैरत होती है कि चलो भाई नहीं इधर बनती, तुम दूसरे में से दे दो। अच्छा उसको ज़कात लगती है, उसको लगती है, ख़ुद भी शक है कि नहीं लगेगी, तो भाई 250 उधर दे रहे ना, ऊपर से 0.5 इनको भी दे दो, गरीब को सदके में से दे दो। लेकिन इंसान का दिल घुटता है क्योंकि इंसान के नफ्स में माल की मोहब्बत है। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम्हें कसरत की हवस ने हलाक कर दिया यहाँ तक कि तुम कब्रों तक पहुँच गए। तो लिहाजा माली मामलात को भी देखना है। अल्लाह ताला कहते हैं सुम्म तवल्लै तुम इल्ला क़लीलम मिनकुम, फिर तुम में से सारे फिर गए। किससे फिर गए? इन बातों पे अमल करने से। यानी बज़ाहर बड़ी आसान बातें थी लेकिन तुम्हें ये भी बड़ी मुश्किल लगी तो सब चले गए। वन तुम मौरिदून, और तुम तो मुँह फेरने वाले हो। यानी इतनी आसान शरीयत दी तुम्हें, इसके बावजूद तुमने नहीं माना। आज यहूद को देखिए, उनकी शरीयत में इनमें से कोई बातें नज़र ही नहीं आएंगी। आज के क्रिश्चियंस को आप देखें तो आपको यकीन ही नहीं आएगा कि इनको भी नमाज़ फ़र्ज़ की गई थी और ज़कात दी गई थी और इन पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। कुतिबाल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, अल्लाह ने हमें कुरान में बता दिया कि मुसलमानों रोज़े सिर्फ तुम पर नहीं फ़र्ज़ बल्कि तुमसे पहलों पर भी फ़र्ज़ थे। तो तुम ये मत सोचो कि हम पर ही रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए, दूसरों पर भी फ़र्ज़ हैं। क्या आज के ज्यूज़ और क्रिश्चियंस को देख के लगता है कि उनके दीन में रोज़े थे, नमाज थी, हज था, पर्दा था, सूद हराम था? नहीं दिखता ना। तो आज के बाद अगर कोई किताब उतरती तो आज के मुसलमान को देखकर भी यही लगना था लोगों को कि ये वाकई वही मुसलमान है जो कुरान में लिखा हुआ है। किसी की बात कई दफ़ा दोहरा दी मैंने कि मुझे वो कुरान दो जिस पर तुम मुसलमान आजकल अमल कर रहे हो, मुझे तो इस कुरान में ऐसी कोई बात नहीं दिखी जो तुम मुसलमानों के अमल में हो। तो याद रखिए, हम अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। अधूरी दीनदारी, मुलम्मा साजी की हुई दीनदारी अल्लाह को पसंद नहीं है। वल्लाही अल्लाह की ज़ात जिस चीज़ को हमसे चाहती है वो क्या है कि तुम्हारे अंदर पूरे का पूरा दीन आ जाए, तुम्हारा कॉल, तुम्हारा फेल, तुम्हारी सब चीज़ें बेहतर हो जाएं, फिर देखो तुम्हें दुनिया में कितनी इज्जत मिलती है, तुम्हें कितना गलबा मिलता है। अब ये सारी बातें तो हमने कर ली और इस पर हम अपने दिल से भी दुआ करेंगे कि अल्लाह हम सबको दीन पे अमल की तौफीक दे, इनफरादी तौर पे भी, इज्तमाई तौर पे भी, उम्मत मुस्लिमा की इस्लाह कर दे। लेकिन अब इसमें हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात करेंगे, वक़ूलु लिन्नासी हुस्ना, क्योंकि आप देखिए इंसान की नेकियों की फसल को काटने वाली जो कैंची है ना वो ज़ुबान है। نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت حدیثیں ہمیں یہ بات دکھاتی ہیں کہ بہت سارے لوگ جو جہنم میں جائیں گے وہ اپنے زبان کے گناہوں کی وجہ سے جائیں گے۔ ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ صبح جب ہوتی ہے تو جسم کے سارے اعضا مل کر زبان کے پاس آتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرتی رہنا۔ کیا مطلب؟ کہ اگر تم سیدھی روئی تو ہم سب بھی جنت میں جائیں گے، اور اگر تم نے گناہ کیے تو تمہارے ساتھ ساتھ ہمیں بھی جہنم میں جلنا پڑے گا۔ تو اس زبان کی کیا تباہیاں اور اس کا کیا بہترین استعمال ہے، اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ یہ بتائیے کہ کیا اس کی ضرورت ہے؟ کیا ہم اپنی زبان کا صحیح استعمال کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ آج کتنی لڑائیاں، کتنے جھگڑے، کتنی بدمزگیاں ہیں گھروں میں، خاندانوں کے خاندان ناراض، مذہبی جماعتیں دوسری جماعتوں سے ناراض، سیاسی گروہ دوسرے سیاسی گروہ سے ناراض، کوئی دنیا دار ہے کسی عہدے پہ پہنچ گیا تو وہ اس سے ناراض۔ آپ دیکھیے شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، بھائی بہن سے آج خفا ہے، اس میں آپ نوٹ کر لیجئے سب سے بڑی وجہ زبان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں دی ہیں نا، اس میں سب سے خوبصورت نعمت ایمان کے بعد اگر آپ دیکھیں تو وہ قوت بیان ہے، بولنے کی طاقت۔ آپ دیکھیے کہ لا الہ الا اللہ بھی تو زبان سے ہی ادا ہوتا ہے نا۔ اگر ہم بول ہی نہ سکتے تو کیا کرتے؟ باقی ساری مخلوقات سے اللہ نے انسان کو اگر فضیلت دی ہے نا، تو آپ دیکھ لیں کہ اس میں بڑی وجہ کہ انسان باتیں کرتا ہے۔ گھوڑا نہیں بولتا، گائے نہیں بولتی، بکری نہیں بول پاتی، انسان اپنی بات پیش کرتا ہے۔ سورۃ الرحمن میں کیا آتا ہے؟ الرحمن علمہ القرآن، وہ رحمان جس نے قرآن نازل کیا اور انسان کو قوت بیان دی۔ تو قوت گویائی یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔